आप सबको इस बात से शायद और कह सकता हूँ यकीन से कि कोई खबर ना हो कि हम सब यहाँ पर महफूज हैं, लेकिन दुनिया के बहुत से इलाकों में मसीहत पर, मसीहियों पर हमलों का बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है। इसलिए जगह ब जगह लड़कियों को, नौजवानों को, बेटों बेटियों को पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, इंडिया, अफ्रीका और दूसरे बहुत से ममालक हैं मसीह के नाम पर सताया जा रहा है। इसलिए हम जो सताए नहीं गए, हम सब पर ये बहुत ही भारा, क्या कहते हैं, फर्ज है कि दूसरे ईमानदारों के लिए दुआ करें। तो जब भी मौका मिले आज दिन के दौरान, एक दूसरे से शेयर करें, एक दूसरे को बताएं कि हमारे मसीह बहन भाई दुनिया के इर्द गिर्द इलाकों में, नामालूम जगहों पर, कैद खानों में सिर्फ और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा सताए जा रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो मसीह का इनकार करें और उनके खुदाओं के पीछे हो जाएं, मसीह का इनकार करें और कुछ और का बात का इनकार ना करें, सिर्फ और सिर्फ मसीह का इनकार करें। इसलिए अपनी दुआओं में ईमानदारों को याद रखें। और जैसे बहुत दफा कहा जाता है कि हम अपने दुख पर गौर करते हैं, लेकिन अपने इर्द गिर्द के दुखों पर नहीं देखते। हमें ईमानदार होते हुए एक दूसरे के बारे में फिक्र, एक दूसरे के बारे में सोचते रहना चाहिए। और यही इब्तदाई कलीसियों का तरीका कार था। आज हम जब रफाकत के लिए इकट्ठे होंगे, उस रफाकत में जब खाना खाया जाएगा, तो उसमें हम ना किसी अदाकार की बात करेंगे, ना किसी और की, बल्कि मसीही आबादी, मसीही लोगों के बारे में, एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे के साथ अपनी दुआया दरख्वास्तों को शेयर करेंगे, ताकि हम इस रफाकत को जो शुरू करने वाले हैं, एक ही मकसद है, एक दूसरे के लिए दुआ करें, एक दूसरे के लिए रूहानी तरक्की का बायस बने। क्योंकि आज इब्लीस ने बहुत ज़बरदस्त जॉब, जिसे कहते हैं कि काम या सरगर्मी की हुई है, बहुत अच्छी कारकर्दगी की है, जिसके बायस मसीही ऐसे नहीं है, एक मुठ नहीं बल्कि ऐसे हो चुके हैं, और जो दराड़ें पड़ी हैं उनमें वो अपनी बहुदा बातों को, बेफायदा बातों को इब्लीस लाता है, ताकि फिर दोबारा ये हाथ इकट्ठा ना हो सके। खुदावंद यीशु मसीह के जमीन पर आने का यही मकसद था कि आलमे बाला पर खुदा की तमजीद और उन आदमियों से जिनसे वो राजी है, जमीन पर सुलह करवाने के लिए खुदा के साथ। और जब हमारी सुलह खुदा के साथ होगी, तो फिर दुनिया के जो मसीही हैं उनके साथ भी हम अमन अमान और शांति के साथ रहेंगे। तो आए हम सब खुदा के हुजूर झुकें, अपने आप को खुदा के कलाम के लिए तैयार करें। खुदा बाप, आज का कलाम कि तू अजर देने वाला है, तू बदला देने वाला है, तू ही सिला देने वाला है लश्करों के रब, आज की इबादत में हम तेरी आवाज़ को जब सुने, तो खुदावंद हमारी जिंदगियों में तेरी एक अजीब कुर्बत और नज़दीकी हम सबको हासिल हो, और तेरी आवाज़ को, जैसे तूने कहा है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ को जानती हैं, तेरी आवाज़ को सुनने वाले बने। और इसी तरह खुदा खुदा दुनिया भर में उन तमाम मसीही बहन भाइयों के लिए जो कैद खानों में हैं, जो भट्टों पर हैं, जो खुदा खुदा स्कूलों में हैं, घरों में हैं, कॉलेजों में हैं, अगवा किए गए हैं, बे बसी की हालत में उनके साथ बहुत सी बदी की जा रही है, खुदावन उन सब का तू हौसला है, उन सबको संभाल। और हम जो यहाँ पर क्रिसमस की खुशियाँ और बड़े धूमधाम से कपड़ों में, इन बातों में, उन बातों में मसरूफ़ है, खुदावन हम अपनी मसरूफियत में से वक्त निकालें और ईमानदारों के लिए दुआ करने वाले बने। यीशु मसीह के नाम में आज हमको अपने कलाम के वसीला से बरकत दे, ये दुआ मांगते हैं, आमीन। हम सीख रहे हैं कि कोई हमको बेफायदा बातों से धोखा ना दे, और हमारी ज़िंदगी में कलामे खुदा में बहुत सी मिसालें, बहुत सी कहानियां, बहुत से वाकयात हैं जिनसे हमें कोई फ़ायदा नहीं। हम देख सकते हैं इब्तदा ही से अगर पैदाइश से शुरू हो जाए तो अगर हम उन तमाम वाक्यात को देखना शुरू करें तो हम वो तमाम बेफायदा बातें देख सकते हैं जिनसे उन ईमानदारों को कोई फायदा नहीं हुआ और हमें भी कोई फायदा नहीं हो सकता। इसलिए कलामे खुदा भरा पड़ा है, ये सब बातें इसीलिए लिखी गई हैं फायदा की और बेफायदा की, ताकि हम इम्तियाज कर सकें। इम्तियाज से मुराद यानी कि जांच पड़ताल कर सकें, जाके हम जान सकें कि सच क्या है। और ये बहुत ही उम्दा बात है, हम ईमानदार होते हुए, हम ईमानदारों को ये बात जेबा है कि हम जांच पड़ताल करें, तहकीक करें, जांचें, तजर्बा करें। और खुदा अपने कलाम में बार बार कहता है कि मेरी मर्जी को तजर्बे से मालूम करो। आप सबको याद है रोमियो 12 बाप उसकी पहली आयत और दूसरी आयत, ऐ भाइयों मैं तुमसे इल्तमास करता हूँ इस जहाँ के हम शक्ल ना बनो बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ और खुदा की मर्जी को क्या करो तजर्बे से मालूम करते रहो। एफसियों 5 बाप हम जब उसको देखते हैं वहां पर 9 आयत में क्या लिखा है, 10 आयत में, और तजर्बे से मालूम करो कि खुदा को क्या पसंदीदा है। हमें नए अहदनामा में कलीसिया मिलती है बीडिया में। वो कलीसिया क्या करती थी, पालूस रसूल उनके पास गया और पालूस और सलास ने बीडिया में पहुंचकर वहां पर यहूदियों के इबादत खाना में जब लोग जो थसलीके के थे, यहूदी थे, नेक नाम थे, उनको कलाम सुनाया। यह हवाला आपको मिलेगा, हम यहां पर जाएंगे नहीं। 17 बाप, इमाल 17 बाप आप जब 10वीं आयत से पढ़ते हैं तो वहां पर बीडिया की कलीसिया का हमें जिक्र मिलता है। थसलीके के लोग बड़े कलाम में सरगरम, हिकमत दनाई रखने वाले और खुदा से मोहब्बत रखने वाले लोग। पालूस और सलास उनके पास जाता है, पैगाम देता है, वो पैगाम सुनकर क्या करते हैं, तहकीक करते हैं। क्या करते हैं कि वो रोज बरोज जब कलाम सुनते थे, किताबे मुकद्दस को खोलते और तहकीक करते और उन बातों पर गौर करते थे जो पालूस रसूल को सिखाता था। और बथेरे यूनानी और थिसलाइका के जितने लोग थे वो सब मसीह के ईमानदार बने, मसीह को उन्होंने कबूल किया। इसलिए मैं आज चाहता हूं कि हम चंद एक बातों पर गौर करें। इसलिए मेरे पास बहुत सी सोचें मेरे जहन में घूम रही हैं, लेकिन मैं खुदा से पूछ रहा हूं कि कहां से शुरू करूं, कहां से शुरू करूं कि कोई तुमको बेफायदा बातों से धोखा ना दे। आए मेरे साथ देखें अब्रानियों 11 बाप। अब्रानियों 11 बाप, हर ईमानदार को सबसे पहले इस बात को मानने की जरूरत है, इस बात को यकीन में लाने की जरूरत है। अब्रानियों 11 बाप उसकी 6 आयत, 6 आयत में यूं लिखा है, अब्रानियों 11 बाप उसकी 6 आयत, और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। खुदा हमसे कोई कुर्बानी, कोई हदिया, कोई और चीज नहीं चाहता, वो चाहता है कि हम इस बात को माने कि वो है। जबूर 14 को जब देखते हैं वहां पर लिखा है कि अहमक ने अपने दिल में कहा है कि कोई खुदा नहीं, लेकिन यहां पर इब्रानियों का मुसन्नफ कहता है बगैर ईमान के, अगर ईमान नहीं तो उसको पसंद आना नामुमकिन है। इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को अमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है, वो आज यहां पर मौजूद है, वो इब्तदा ही से मौजूद है। बहुत मुख्तलिफ तालीमात पाई जाती है दुनिया में, वो कहते हैं खुदा है ही नहीं, खुदा है ही नहीं। एक फिरका है उसे कहते हैं एथियस्ट, ये दुनिया के बहुत से, इनकी बहुत तादाद ज्यादा बढ़ रही है और इनका यकीन क्या है, कोई खुदा नहीं, खाओ पियो बेहयाई के काम करो, किसी का खौफ नहीं, इस जिंदगी के बाद कुछ भी नहीं है। एथियस क्या यकीन करते हैं, खुदा है ही नहीं। बाइबल मुकद्दस क्या कहती है कि वो जो कोई खुदा के पास आए उसे ये याद रखना चाहिए कि वो मौजूद है, वो का लफ्ज खुदा के लिए है, और अपने तालबों को बदला देता है, अपने तालमों को बदला देता है। बदला, सिला, अनाम, यानी कि जब कोई खुदावन खुदा पर यकीन करके उसकी दी हुई हदायत पर चलता है तो उसके लिए अनाम है, उसके लिए बदला है। आप सबको याद होगा कि मत्ती की इंजील में खुदावन यीशु मसीह के शिगिर्दों ने पूछा था कि हमको क्या मिलेगा, हमको क्या मिलेगा, हमारा क्या अजर होगा। तो खुदावन यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा था कि हमेशा की जिंदगी और आने वाले जहां में 100 गुना। अगर तुम मेरे पीछे अपनी सलीब उठाओ और मेरी राहों पर चलो और मेरा इकरार करो तो हमेशा की जिंदगी और उसके साथ 100 गुना बदला सिला। आए पदेश 15 बाब देखें। आज दुनिया के किसी भी मजहब के पीछे चलेंगे तो सबसे पहले ये सवाल किया जाता है। हाँ जी, 15 बाब, पदेश 15 बाब उसकी पहली आयत। ये इब्राहिम की कहानी है। हम सबको पता है कि इब्राहिम का बाप तारा क्या था, बुत परस्त था। वो समंदर के पार उन तमाम अबूदों की इबादत करता था जो अपनी जात से खुदा नहीं थे। जब हम पदेश 15 बाब देखते हैं तो वहां पर हमें यह जिक्र मिलता है, क्योंकि 12वें बाब में खुदावन खुदा ने इब्राहिम को बुलाया और वो अपने घर, अपने रिश्तेदार, अपने नातादारों को सबको छोड़ छाड़ कर अपनी बीवी को लेकर खुदा के बताए हुए रास्ते पर जाता है। और उसने क्या किया, ईमान रखा कि बगैर ईमान के वो खुदा की उस आवाज़ को कबूल नहीं कर सकता था। इसलिए उसने ईमान से क्या किया, अपना घर बार रिश्तेदार सबको छोड़ दिया। और 15वीं आयत में खुदा से कलाम में लिखा है कि उससे रोया पर जाहिर हुआ, उसमें रोया से उसे बातें की। और क्या लिखा है, पदेश 15 बाब उसकी पहली आयत, इन बातों के बाद खुदावंद का कलाम रोया में अब्राम पर नाजल हुआ। अब्राम का मतलब एक कौम का बाप या बुजुर्ग, इब्राहिम का मतलब है कौमों का बाप, उससे नस्लें बरकत पाएंगी। पदेश 15 बाब उसकी पहली आयत, इन बातों के बाद खुदावंद का कलाम रोया में अब्राम पर नाजल हुआ और उसने फरमाया, ए इब्राम तू मत डर, मैं तेरी सिपर और तेरा बहुत बड़ा अजर हूं। मैं तेरी सिपर, सिपर जैसे सिपाहियों के लिए एक बख्तर होता है अपने आप को पथराव से बचाने के लिए। खुदा कहता है कि मैं तेरी सिपर हूं, यानी कि तेरी ढाल हूं, तेरे आगे आगे चलूंगा, तुझे बचाऊंगा हर खतरे से और तेरा बहुत बड़ा अजर हूं। बहुत बड़ा अजर, क्योंकि इब्राहिम ने खुदा से कहा था कि खुदावन खुदा मैं तो जाता हूं, जब मैं चला जाऊंगा, मर जाऊंगा, मेरी मिरास कौन संभालेगा। तो उसने कहा कि मेरा बेटा तो अलीअज़र है जो दमिश्की है, क्या होगा। सो खुदावन खुदा ने उसे क्या दिया, इस जमीन पर इजहाक दिया। सो हम अजर की बात कर रहे हैं कि हमको ईमान लाने वालों को ये बात जाननी चाहिए कि वो अजर देने वाला है। इसलिए दुनिया के बहुत से मजाहब में कहा जाता है, जी आपको शराब की नदी मिलेगी और उसमें खूब घूमने और झूमने का मजा होगा, आपको इतनी बीवियां मिलेंगी, आपको ये मिलेगा, आपको वो मिलेगा। खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि अगर तुम इस बात को मनाना चाहते हो तो इस जमीन पर 100 गुना और आने वाले जहां में हमेशा की जिंदगी। हमारा अजर। सो आए चंद एक बातें देखें, वो कौन सी बातें हैं जिनसे हमें फायदा नहीं है। हम ये जान गए हैं कि खुदा ने इब्राहिम को अजर दिया क्योंकि उसने अपने जादूगर बाप दादा की उस तमाम रस्मों को छोड़कर इब्राहिम का खुदा जो आज कहलाता है आसमान के खुदा को अपनी जिंदगी में जगा दी। आए देखें कि वो कौन सी बातें हैं, चंद एक बातें जिनसे हमें फायदा नहीं। मत्ती की इंजील उसका छठा बाप, मत्ती की इंजील उसका छठा बाप। यहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने उन बातों को मुतारफ करवाया है जिनसे हमें कुछ फायदा नहीं है जब उनको गलत करेंगे। अगर यही बातें इन रहनुमाओं ने ठीक की होती तो उनसे फायदा होता। सो छठे बाप की पहली आयत में लिखा है, खबरदार अपने रासबाजी के काम आदमियों के सामने दिखाने के लिए ना करो, नहीं तो तुम्हारे बाप के पास जो आसमान पर है तुम्हारे लिए कुछ अजर नहीं। रासबाजी के काम, दिखावे के लिए, गलती यहां पर है, बेफायदा किस बात में है? दिखावे के लिए। क्योंकि पीछे खुदावन क्या कहता है, जब हम पांच बाप उसकी 16 आयत को पढ़ते हैं, जरा 16 आयत को मेरे साथ देखें, पांचवें बाप की 16 आयत। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। नेक काम करने हैं लेकिन उनका करने का तरीका है। और यहां पर क्या कहा गया है, रासबाजी के काम। मिसाल के तौर पर एक काम ले लें, बहुत दफा हम कलीसिया में दुआ करने के लिए जाते हैं, मिसाल के तौर पर जब देख दी जाती है, देख दी जाती है 3400, 3500, 10,000 की जितने की भी है, वो खाना किसी न किसी खानदान में यही किया, अपने दिल में कसद किया होता है, तहिया किया होता है, यकीन किया होता है कि ये मैं खाना खुदा की नजर कर रहा हूं। लेकिन क्या होता है, जब खाना तैयार हो जाता है वो खुदा की नजर करने की बजाय सिर्फ रिश्तेदारों में दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, क्या ये खुदा को पसंदीदा है? हमें खुद सोचने की जरूरत है। खुदावंद इस खाने को मैं गरीबों के लिए अलहदा कर रहा हूं, हमारा हाल भी बहुत दफा पुराने अहदनामे के लोगों की तरह होता है कि जो कुर्बानी खुदा की नजर है वो खुद खा जाते हैं और जो लोगों की नजर है उसका पता ही नहीं चलता। सो रासबाजी के काम, हम सबको रासबाजी के काम करने की जरूरत है, ये फायदामंद है। क्योंकि रासबाजी के काम करेंगे तो हमें अजर मिलेगा, लेकिन अगर दिखावे के लिए करेंगे, कितना फर्क है, आदमियों के सामने दिखावे के लिए ना करो। अगर दिखावे के लिए नहीं करेंगे तो कोई नुकसान नहीं, अगर दिखावे के लिए करेंगे तो नुकसान क्या होगा, अजर का। सो अपनी कुर्बानियां, शुक्रगुजारियां किसके लिए होनी चाहिए, खुदा खुदा के लिए। और आगे क्या लिखा है, पस जब तू खराद करे तो अपने अपने आगे नरसिंगा ना बजवा जैसा रयाकार इबादत खानों और कूचों में करते हैं ताकि लोग उनकी बढ़ाई करें, मैं तुमसे सच कहता हूं वो अपना अजर पा चुके। उस दौर में जब खुदावंद यीशु मसीह का दौर है, यीशु मसीह हैकल में जाते हैं, हैकल में जो लोग हदिया शुक्रगुजारी लाते थे वो क्या करते थे, दिखावे के लिए अपने आगे डंका बजवाते थे, डंका बजवा के कहते थे कि जी ये मेरी तरफ से है तुम्हारे लिए, मैंने दिया है। गौर किस बात पर करवाई जाती थी, मैंने 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 मैंने, जिसे कहते हैं मैं। बल्कि जब तू खराद करे तो तेरा दाहिना जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जाने। कहने से मुराद यही है, ये नहीं कि हम इस हाथ से रोटी खाएं और इस हाथ को पता ना लगे। यीशु मसीह का कहने का मतलब ये है कि जब तू दे तो उसे पोशीदगी में दे, हलीमी में दे, फरोतनी में दे, अपने आगे बाजे ना बजा। सो इससे कोई फायदा नहीं। और बहुत सी दूसरी बातें हैं जिनसे फायदा नहीं। बहुत दफा पादरी साहबान घर में आते हैं तो जब हम हदिया देते हैं, छोटे बच्चे दे हथों पड़ मोने जिमें कहते के सदका दे रहे हूं, इससे भी कोई फायदा नहीं। खुदावंद खुदा हदीये पर नज़र करता है, हमारे दिलों पर नज़र करता है। ये नहीं कि वो छोटा बच्चा जी ये एदा सी सिर सदका दे रहे हैं जी। हम देते हैं करते हैं, लेकिन बहुत दफा तरीकाकार थोड़ा सा खराब हो जाता है। इस सूरत में तेरा बाप जो पशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। खुदा हमें पशीदगी में देखता है, वो हमारा बदला देने वाला है। और आगे बहुत सी बातें हैं, रोजा, बहुत सी बातें हैं, दुआ, बहुत सी दूसरी बातें हैं जो बाइबल मुकद्दस में हमें मिलती हैं कि हम रोजा रखते हैं उस तौर से नहीं रखते। यहूदियों से खुदावंद खुदा को यही क्या थी, नाराजगी थी यशायाह के बाप में कि तुम रोजा रखते हो और फिर कहते हो कि खुदा हमारी नहीं सुनता, नहीं सुनता। मैं किस तरह सुनूं कि तुम जब रोजा अपने लिए रखते हो ना कि खुदा के लिए। तुम दुआएं करते हो सिर्फ इसलिए कि मैं। ये यहूदियों को खुदावंद खुदा मलामत करता है यशायाह नबी के सहीफा में। तो चंद एक बातें जिनसे हमें कोई फायदा नहीं। फायदा किन बातों से हो सकता है, मेरे साथ देखें इसी किताब में, इसी खत में, इसी बाप, इसी अंजील में। 10 बाप उसकी 41वीं आयत, 10 बाप उसकी 41वीं आयत। खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों से बात कर रहे हैं कि ये ना समझो कि मैं जमीन पर सुलह कराने आया हूं बल्कि लड़ाई कराने। ये लड़ाई किस तरह होगी, जब मैं यीशु मसीह की इबादत करूंगा और मेरे बाकी खानदान के लोग किसी और की इबादत करेंगे तो लड़ाई होगी, क्योंकि सच और झूठ का कभी भी मेल जोल हो नहीं सकता। तरीकी और नूर इकट्ठे रह नहीं सकते, बल्कि जहां पर नूर आता है तरीकी वहां से भाग जाती है। और खुदा ने यीशु मसीह ने कहा, जो नबी के नाम से नबी को कबूल करता है वो नबी का अजर पाएगा। हमारे दौर में कोई नबी नहीं है, क्योंकि सब नबी अपनी खिदमत को पूरा करके खुदावंद खुदा का मकसद पूरा कर चुके हैं। हमारे पास मूसा नबी नहीं है, हमारे पास एलिया नबी नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पर ले सकते हैं कि जो कोई खुदा का कलाम करता है अगर हम उसे कबूल करते हैं तो उसका अजर पाएंगे। और जो रासबाज के नाम से रासबाज को कबूल करता है वो रासबाज का अजर पाएगा। और जो कोई शिगिर्द के नाम से इन छोटों में से किसी को सिर्फ एक ठंडा पानी का ठंडा एक प्याला ठंडा पानी ही पिलाएगा तो मैं तुमसे कहता हूं वो अपना अजर हरगिज ना खोएगा। एक ठंडा पानी का प्याला पिलाने से भी खुदा खुदा इसको अपने किताबे हयात में रखता है। इसलिए हम सबको इस सच से वाकिफ होने की जरूरत है कि आपका और मेरा अजर खुदा की तरफ से है। इसलिए ये जमीन है जहां पर हम तैयारी कर रहे हैं ताकि अपने घर को जाएं। जैसे जब हम पाकिस्तान वापस आते हैं और मैं और कैरी हम सब दोनों को और बहुत से दूसरे लोगों को बहुत जिम्मेदारी के काम होते हैं कि हमने ये करना है, वो करना है, वो करना है, ताकि जब हम वहां पर जाएं तो अपनी पूरी तवज्जो दे सकें। हमें बिजली का बिल देना है, हमने कार की हिफाजत करनी है, अपने घर की हिफाजत करनी है, कोई खाने पीने की चीज़, हर चीज़ को संभालना है। वैसे ही हमें इस ज़मीन पर पूरी तैयारी करनी है अपने आसमानी खुदावंद के घर की, जो हमारा घर रहेगा, कि जब उसके हजूर जाएंगे तो उसकी तैयारी के लिए जैसे हैकल में काहिन की छाती पर वो कीमती पत्थर, यकूत, फरोजा, जबरजद, हकीक, नीलम, हीरा, फरोजा, जरकून और दूसरे पत्थर लगे हुए होते थे, जैसे आने वाले यरूशलेम में लगे होंगे, हम भी यहाँ पर उन तमाम पत्थरों को जो बेशकीमती काम है खुदावन के हजूर करें, ताकि हम सबको क्या मिले, बदला मिले। इसलिए इस बात पर ख़त्म करना चाहता हूँ, जो काम करो ये जान के करो कि खुदावंद के लिए करते हो, ना कि आदमियों के लिए। अगर हम आदमियों के लिए करेंगे तो कुछ अजर नहीं, अगर आदमियों के लिए करते हैं तो इसलिए करना है क्योंकि खुदा के लिए करते हैं। खावंद अपनी बीवी से मोहब्बत रखे और बीवी उसकी ताबेदारी किस लिए करती है, इसलिए नहीं कि मेरे खावंद के बाल बहुत अच्छे हैं, उसकी मूछें बहुत अच्छी हैं, वो काटन का जोड़ा पहनता है और कवाटी जुटी बहुत अच्छी है या खूबसूरत है। नहीं, बीवी इसलिए उसकी खिदमत नहीं करती बल्कि इसलिए कि खुदा का हुक्म है। खावंद अपनी बीवी से इसलिए मोहब्बत करे, इसलिए नहीं कि बीवी ने ये किया और वो नहीं किया। खावंद को हुक्म है कि अपनी बीवी से मोहब्बत रखो, जैसे कलीसिया से मसीह ने मोहब्बत की। मसीह की मोहब्बत को कोई नहीं बदल सकता। अगर आप गिरजा घर में आए या ना आए, मसीह की मोहब्बत आपके साथ वैसी ही रहेगी। नुकसान किस बात का होगा? अजर का। सो आए हर रोज इस बात पर गौर करें कि जब उसके हजूर हाजिर होंगे तो उससे क्या कहेंगे और क्या तोहफे उसे पेश करेंगे, जैसे उन बादशाहों ने जो मशरक से आए, जिनको मायूसी कहते हैं, अक्लमंद बंदे भी कहते हैं, आए और उन्होंने पेश किए।